नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से उत्पन्न चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया। कल इस मामले में सुनवाई होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने ई मित्र संचालकों से अभ्यर्थियों की मूल शैक्षणिक योग्यता की जांच के बाद ही भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भरने को कहा। और प्रदेश में सर्द हवाओं ने गलन का एहसास बढ़ाया, कोहरे से भी जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी है और इस वर्ष का आखिरी अंक होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों से किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुनने के लिए तैयारियां की गई हैं। कोटपुतली बह रोड में विधानसभा स्तर पर विशेष बूथ बनाए गए हैं, जहां आमजन प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कल भी इस बैठक की अध्यक्षता की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान उन्होंने शासन और सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। 3 दिन का यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं पर निरंतर वार्ता के जरिए केंद्र राज्य की भागीदारी को मजबूत करना है। ये सम्मेलन सहयोगपूर्ण संघवाद की प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से गांवों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतें मिलकर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। श्री चौहान कल भोपाल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। यूपीए सरकार ने मनरेगा में केवल 2,13,000 करोड़ रूपये खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं।
विकसित भारत के लिए विकसित गांव, जिसमें विकास के सारे काम ग्राम पंचायत तय करेगी, ऊपर से नहीं। पहले तो ऊपर से थोप दिए जाते थे काम, अब ग्राम पंचायत तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी। और इसके लिए जो प्रस्तावित बजट है वो 1,51,282 करोड़ पहले साल ही, ताकि मजदूर को काम भी भरपूर मिले और गांव का विकास भी ऐसा हो के गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, विकसित गांव बन जाए। और मजदूरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता का पुख्ता प्रावधान, उसको और बेहतर बनाने का काम किया गया है।
वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस साल ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। इस साल किए गए बदलावों पर विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज पेश है बिल्डिंग न्यू इंडिया पर समाचार कक्ष से डॉ सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
बिल्डिंग न्यू इंडिया एक व्यापक और समग्र अवधारणा है जो देश के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव के लिए सरकार, उद्योगों और विशेषज्ञों के प्रयासों को दर्शाती है। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर, डिजिटल और विकसित भारत का निर्माण करना है। मोदी सरकार ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए पिछले दशक में 17 करोड़ नौकरियां सृजित की और बेरोजगारी दर इससे 6% से घटकर 3.2% हो गई। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बुनियादी ढांचे के लिए आधुनिक रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के कोने कोने को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल पर जोर है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचने की राह पर है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से उत्पन्न चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह की अवकाशकालीन पीठ कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा को लेकर हुए जन विरोध के बाद आया है। ये विवाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में स्थित अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों से उपजा है, जिसके कारण पहले नियामकीय खामियां पैदा हुई और अवैध खनन को बढ़ावा मिला। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसके स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण, खान और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अरावली के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास पर हैं। उन्होंने कल कोटा में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही श्री बिरला अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और आवागमन सुविधाओं के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा।
और कोटा बूंदी में कई परियोजनाएं पूरी होगी, उनका लोकार्पण करेंगे, कई का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक व्यापक कार्य योजना बनाकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ शहर के अंदर आवागमन की सुविधा ठीक हो, किस तरीके से बिना आवागमन के रुके लोगों को किस तरह की सुविधा मिल सकती है, उसकी भी कार्य योजना बनाएंगे।
राज्य लोक सेवा आयोग ने बिना जांच के अभ्यर्थियों का फॉर्म भरने वाले ई मित्र संचालकों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने साफ कहा कि ऐसे ई मित्र संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को पत्र लिखा है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा है कि ई मित्र संचालकों को अभ्यर्थियों की मूल शैक्षणिक योग्यता की जांच करनी चाहिए। इस काम में लापरवाही के कारण कई भर्तियों में लाखों की संख्या में ऐसे आवेदन मिलते हैं जो उस पद के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं। इससे श्रम और समय की बर्बादी होती है। आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से भी आग्रह किया है कि वे अपने जिले के ई मित्र संचालकों की निगरानी करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में सर्दी की रंगत बढ़ गई है। चूरू, जालौर, करौली, सवाई माधोपुर सहित कई जगह सर्द हवाओं से गलन का एहसास हो रहा है। वहीं कोहरे से भी जनजीवन प्रभावित है। कम दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि ये ठंड फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। नागौर में सर्द हवाओं से ठिठुरन बरकरार है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नागौर जिले में इन दिनों तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सुबह सुबह सड़कों पर आवाजाही कम नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। सर्दी का सबसे अधिक असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों पर देखा जा रहा है। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 7 शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं आज अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और डीडवाना कुचामन में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से उत्पन्न चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया। कल इस मामले में सुनवाई होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने ई मित्र संचालकों से अभ्यर्थियों की मूल शैक्षणिक योग्यता की जांच के बाद ही भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भरने को कहा। और प्रदेश में सर्द हवाओं ने गलन का एहसास बढ़ाया, कोहरे से भी जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।